कार्यक्रम सत्यवचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इन दिनों हम बाइबल की 10वीं पुस्तक दूसरा शमूएल का अध्ययन कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे इन अध्ययनों से अवश्य लाभ प्राप्त हो रहा होगा।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर की निकटता में रह करके कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, जो प्रतिदिन अपने समय को दे करके परमेश्वर के वचन में से सीखते हैं। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि दाऊद के पुत्र अबशलोम ने विद्रोह किया, जिसके कारण दाऊद यरूशलेम से निकलकर जंगल की ओर चला गया कि यरूशलेम नगर की सुंदरता और भोली जनता युद्ध के कारण नाश ना हो। अबशलोम ने संपूर्ण इसराइल को अपने पक्ष में कर लिया और सबसे बड़ी बात, दाऊद का मित्र जो उसका सेनापति था अहितोपेल भी अबशलोम के साथ हो गया। और इधर दाऊद हुशै को अबशलोम से संधि करने को भेज देता है कि वह अबशलोम को अहितोपेल से अलग सलाह दे। परमेश्वर ने कुछ किया भी ऐसा कि अबशलोम ने हुशै की सलाह मानी, जिसके कारण अहितोपेल ने आत्महत्या कर ली। और तब हम आगे देखते हैं कि दाऊद के लिए इतना समय बहुत था कि वह अपना सेना विन्यास कर सके। मेरे मित्रों, अब एप्रेम के जंगल में युद्ध छिड़ता है और अबशलोम तथा उसकी सेना, जो जंगल से परिचित नहीं थी, जंगल में फंसकर मरने लगी। अबशलोम के बाल भी एक बांज के वृक्ष में फंस गए और योआब ने उसे मार डाला तथा वहीं पर उसे दफन कर दिया गया। कब्र पर पत्थरों का ढेर लगा दिया गया। उस ढेर को अबशलोम की लाठ भी कहते हैं। अबशलोम की मृत्यु का समाचार सुनकर दाऊद बहुत दुखी हुआ। उसका पुत्र विलाप साहित्य का सबसे अधिक मर्मभेदी विलाप है। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 19 से अध्ययन आरंभ करेंगे, जिसमें हम देखेंगे दाऊद के सिंहासन का पुनःस्थापन, दाऊद को योआब की फटकार, अबशलोम की मृत्यु का समाचार दाऊद के लिए सच में हृदय विदारक था। वह अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता था और उसकी मृत्यु पर उसे असीम दुख हुआ। इसके अनेक कारण भी थे। पहला कारण तो यह था कि दाऊद उसके उद्धार के बारे में आश्वस्त नहीं था। आपको स्मरण होगा कि जब बतशेबा से उसका पहला पुत्र जन्म लेते ही रोगग्रस्त हो गया था और दाऊद ने उसके लिए उपवास रखकर प्रार्थना की थी। जब दाऊद को यह समाचार मिला कि वह शिशु मर गया, तब वह उठा और स्नान करके वस्त्र धारण किया तथा परमेश्वर के भवन में जाकर आराधना की। लौटकर उसने भोजन किया और उसके कर्मचारी उसकी इस प्रतिक्रिया से आश्चर्यचकित थे। उसने उन्हें स्पष्ट कहा कि वह तो मेरे पास नहीं आएगा, परंतु मैं उसके पास अवश्य जाऊंगा। उस महान दिन मैं उससे मिलूंगा। वह जानता था कि वह छोटा शिशु कहाँ होगा, परंतु अबशलोम की मृत्यु पर दाऊद का दिल टूट गया। क्यों? क्योंकि दाऊद को अबशलोम के उद्धार का आश्वासन नहीं था। वह नहीं जानता था कि अबशलोम कहाँ होगा। स्पष्ट कहूं तो दाऊद को ऐसा प्रतीत हुआ कि अबशलोम का उद्धार नहीं हुआ था, और यही कारण था कि वह बहुत दुखी था। उसके दुख का कारण यह भी था कि वह एक महान राजा होकर भी अच्छा पिता न बन सका। मुझे पूरा विश्वास है कि दाऊद को इस सच्चाई का बोध था। जैसा पिता उसे होना चाहिए था, वैसा बनने में वह असफल रहा, और अबशलोम इसका प्रमाण था। मेरे मित्रों, आज ऐसे ही कई पिता हैं जो अपने बच्चों के लिए अच्छा पिता नहीं बन पाते हैं। दाऊद यह भी जानता था कि उसी के पाप के कारण यह समस्या खड़ी हुई थी। परमेश्वर ने तो उससे स्पष्ट कह दिया था कि तलवार उसके परिवार से कभी दूर न होगी। यही तो हुआ भी था। मुझे विश्वास है कि अबशलोम की मृत्यु के बाद दाऊद टूट चुका था, और मेरे विचार में उसके दुख का एक अंश उसकी निराशा भी थी, क्योंकि उसे यह आशा थी कि अबशलोम उसके बाद सिंहासन पर बैठेगा। अतः उसे अबशलोम का विद्रोह स्वीकार्य नहीं था। वह निश्चय ही उसे राजा बनाना चाहता था। दाऊद का विलाप इतना गहरा था कि योआब को भी उसे झिड़कना पड़ा। आइए हम पढ़ें दूसरा शमूएल 19 अध्याय उसके 1 और 2 पद। लिखा है, तब योआब को यह समाचार मिला कि राजा अबशलोम के लिए रो रहा है और विलाप कर रहा है। इसलिए उस दिन का विजय सब लोगों की समझ में विलाप ही का कारण बन गया, क्योंकि लोगों ने उस दिन सुना कि राजा अपने बेटे के लिए खेदित है। मेरे मित्रों, वह दिन विजय का दिन था और आनंद मनाना आवश्यक था, क्योंकि वैरी पराजित किया गया था। परंतु दाऊद के लिए वह विजय नहीं था, वह दिन दाऊद के लिए असीम दुख और विलाप का समय था। दूसरा शमूएल 19 अध्याय के 3 पद में हम पढ़ते हैं, और उस दिन लोग ऐसा मुंह चुरा कर नगर में घुसे जैसा लोग युद्ध से भाग कर आने से लज्जित होकर मुंह चुराते हैं। दाऊद की सेना को तो वास्तव में आनंद मनाना था, परंतु वे युद्ध के मैदान से मुंह लटकाए हुए लौट रहे थे जैसे कि उनकी पराजय हो गई हो। क्यों? क्योंकि अबशलोम मारा गया था और दाऊद उनका राजा अत्यधिक दुखी था। हम दूसरा शमूएल उसके 19 अध्याय और 4 पद में पढ़ते हैं, और राजा मुंह ढांपे हुए चिल्ला चिल्ला कर पुकारता रहा कि हाय मेरे बेटे अबशलोम, हाय अबशलोम, मेरे बेटे, मेरे बेटे। ओह, इस लड़के से दाऊद का प्रेम कितना गहरा था, यह कैसे हृदय स्पर्शी अभिव्यक्ति है। मित्रों, दाऊद एक असफल पिता था, उसने देख रेख पर ध्यान न दिया, परंतु पुत्र की मृत्यु पर वह टूट गया क्योंकि वह उससे बहुत प्रेम रखता था। अबशलोम की मृत्यु का उत्तरदायी युआब था, और मेरे विचार में दाऊद कभी नहीं जान पाया कि उसके पुत्र की मृत्यु कैसे हुई थी। उसने अवश्य ही पुत्र की मृत्यु के विषय अनेक कहानियां सुनी होंगी, परंतु दाऊद अधिक छानबीन करना भी नहीं चाहता था। हम दूसरा शमूएल 19 अध्याय उसके 5 और 6 पद में पढ़ते हैं, तब युआब घर में राजा के पास जाकर कहने लगा, तेरे कर्मचारियों ने आज के दिन तेरा और तेरे बेटे बेटियों का और तेरी पत्नियों और रखेलियों का प्राण तो बचाया है, परंतु तूने आज के दिन उन सबों का मुंह काला किया है, इसलिए कि तू अपने बैरियों से प्रेम और अपने प्रेमियों से बैर रखता है। तूने आज यह प्रकट किया है कि तुझे हाकिमों और कर्मचारियों की कुछ चिंता नहीं, वरन मैंने आज जान लिया कि यदि हम सब आज मारे जाते और अबशलोम जीवित रहता तो तू बहुत प्रसन्न होता। युआब निस्संदेह परिस्थिति को दूसरे परिप्रेक्ष्य में ले जा रहा था, परंतु यह सच ही था। यहाँ प्रकट भी है कि अबशलोम की अपेक्षा यदि अन्य सब मारे जाते तो दाऊद को स्वीकार्य था। युआब दाऊद को झिड़कता है क्योंकि वह उस व्यक्ति की मृत्यु पर विलाप कर रहा था जो पुत्र तो था परंतु दाऊद का बैरी बन गया था, और अवसर पाता तो निश्चय ही उसे मार डालता। हम आगे देखते हैं दाऊद का सिंहासन पर बैठाया जाना। दूसरा शमूएल 19 अध्याय उसके 8 पद में लिखा हुआ है, तब राजा उठकर फाटक में जा बैठा, और जब सब लोगों को यह बताया गया कि राजा फाटक में बैठा है, तब सब लोग राजा के सामने आए और इसराइली अपने अपने डेरे को भाग गए थे। मेरे मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि अब जनता को उत्सव का समय चाहिए था, परंतु सब हताश थे, स्थिति निराशजनक थी। विद्रोही अगुआ मारा गया था, परंतु हर्ष प्रदर्शन की अपेक्षा जनता दाऊद के जीवन का सबसे महान शोक देख रही थी। तथापि युआब के कहने पर दाऊद नगर के द्वार पर गया और प्रजा की निष्ठा के लिए उनकी बड़ी सराहना की। तब हम आगे देखते हैं दूसरा शमूएल 19 अध्याय उसके 9 और 10 पद में, और इसराइल के सब गोत्रों में से सब लोग आपस में यह कहकर झगड़ते थे कि राजा ने हमें हमारे शत्रुओं के हाथ से बचाया था और पलिस्तियों के हाथ से उसी ने हमें छुड़ाया, परंतु अब वह अबशलोम के डर के मारे देश छोड़कर भाग गया, और अबशलोम जिसको हमने अपना राजा होने को अभिषेक किया था वह युद्ध में मर गया है। तो अब तुम क्यों चुप रहते हो और राजा को लौटा ले आने की चर्चा क्यों नहीं करते? ध्यान दीजिए, जो हुआ वह यह था कि कुछ लोग जो अबशलोम के पक्ष में थे अब उसके मृत्यु के बाद असमंजस में थे कि क्या करें, अतः वे राजा को फिर से सिंहासन पर बैठाने का निर्णय लेते हैं। दूसरा शमूएल 19 अध्याय के 11 पद में लिखा हुआ है, तब राजा दाऊद ने सादोक और एब्यातर याचकों के पास कहला भेजा कि यहूदी पुरनियों से कहो कि तुम लोग राजा को भवन पहुंचाने के लिए सबसे पीछे क्यों होते हो, जबकि समस्त इसराइल की बातचीत राजा के सुनने में आई है कि उसको भवन में पहुंचाए। यहूदा के गोत्र भी अबशलोम की ओर चले जाने वाले अनेक थे। दाऊद अब उन्हें उनकी इस अनिष्ठा के लिए झिड़कता है। दूसरा शमूएल 19 अध्याय उसके 12 से 14 पद में हम पढ़ते हैं, तुम लोग तो मेरे भाई वरन मेरी ही हड्डी और मांस हो, तो तुम राजा को लौटाने में सबके पीछे क्यों होते हो? फिर अमासा से यह कहो कि क्या तू मेरी हड्डी और मांस नहीं? और यदि तू योआब के स्थान पर सदा के लिए सेनापति न ठहरे, तो परमेश्वर मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। इस प्रकार उसने सब यहूदी पुरुषों के मन ऐसे अपनी ओर खींच लिया कि मानो एक ही पुरुष था, और उन्होंने राजा के पास कहला भेजा कि तू अपने सब कर्मचारियों को संग लेकर लौट आ। दाऊद को पुनः सिंहासन पर बैठाने के लिए एक मत विचार प्रकट किया गया। तब हम आगे पढ़ते हैं दूसरा शामिल की पुस्तक 19 अध्याय उसके 15 से 17 पद में। तब राजा लौटकर यर्दन तक आ गया और यहूदी लोग गिलगाल तक गए कि उससे मिलकर उसे यर्दन पार ले आए। यहूदियों के संग गेरा का पुत्र बिन्यामिनी सीमी भी, जो बहुरीमी था, फुर्ती करके राजा दाऊद से भेंट करने को गया। उसके संग 1000 बिन्यामिनी पुरुष थे और शाउल के घराने का कर्मचारी सीबा अपने 15 पुत्रों और 20 दासों समेत, और वे राजा के सामने यर्दन के पार पांव पैदल उतर गए। यहाँ पर हम देखते हैं कि शिमी, जो दाऊद पर पत्थर फेंक रहा था और उसे कोस रहा था, जब दाऊद अबशलोम से बचकर भाग रहा था, अब दाऊद के लौट आने पर उसका स्वागत करने वाला पहला पुरुष वही था। दूसरा शमूएल 19 अध्याय उसके 18 से 21 पद में हम पढ़ते हैं, और एक बेड़ा राजा के परिवार को पार ले आने और जिस काम में वह उसे लगाने चाहे उसी में लगने के लिए पार गया, और जब राजा यर्दन पार जाने पर था, तब गेरा का पुत्र शिमी उसके पांव पर गिर के राजा से कहने लगा, मेरा प्रभु मेरे दोष का लेखा न करे, और जिस दिन मेरा प्रभु राजा यरूशलेम को छोड़ आया, उस दिन तेरे दास ने जो कुटिल काम किया उसे ऐसा स्मरण न कर कि राजा उसे अपने ध्यान में रखे, क्योंकि तेरा दास जानता है कि मैंने पाप किया। देख, आज अपने प्रभु राजा से भेंट करने के लिए यूसुफ के समस्त घराने में से मैं ही पहला आया हूँ। तब सरुयाह के पुत्र अभिषय ने कहा, शिमी ने जो यहोवा के अभिषिक्त को शाप दिया था, इस कारण क्या उसको वध करना न चाहिए? दाऊद एक उदार मन का मनुष्य था, वह क्षमा करना जानता था। परंतु हम आगे पढ़ते हैं दूसरा शमूएल 19 अध्याय के 22 पद में। दाऊद ने कहा, हे सरुयाह के बेटों, मुझे तुमसे क्या काम कि तुम आज मेरे विरोधी ठहरे हो? आज क्या इसराइल में किसी को प्राण दंड मिलेगा? क्या मैं नहीं जानता कि आज मैं इसराइल का राजा हुआ हूँ? ध्यान दें, दाऊद ने कहा, मैं इस मनुष्य पर क्यों ध्यान दूं? मैं जानता हूँ कि मैं इसराइल का राजा हूँ। दाऊद संतुष्ट हुआ कि परमेश्वर ने उसे पुनः राजा बना दिया था। मैं शिमी जैसे नगण्य व्यक्ति पर क्यों ध्यान दूं? मैं उसे मृत्यु दंड क्यों दूं? उसके विचार महत्व नहीं रखते हैं। आज अनेक विश्वासी छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं। वे छोटे मनुष्यों की बातों से ही विचलित हो जाते हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है? मेरे मित्रों, संभव है कि आप एक निराश व्यक्ति हैं। क्या आपकी सेवा या आपके घर या आपकी समिति के साथ आपको समस्या है? क्या किसी उपद्रव्य से आपको समस्या है? मेरे मित्रों, सब बातों को भूल जाएं। आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर आपके साथ है। इन छोटी मोटी परेशानियों से उभर कर परमेश्वर की सेवा करें। सुनिश्चित करें कि आप क्या करते हैं, सब बातें भूल जाएं, और हमें उनसे ऊपर उठकर जीना है, ताकि हम परमेश्वर के लिए कार्य कर सकें, एक दूसरे से प्रेम कर सकें, एक दूसरे को हम क्षमा कर सकें। मित्रों, हम दूसरा शमूएल 19 अध्याय उसके 23 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, फिर राजा ने शिमी से कहा, तुझे प्राण दंड न मिलेगा, और राजा ने उससे शपथ भी खाई। ध्यान दें कि शिमी के लिए दाऊद का अंतिम निर्णय था कि वह उसे दंड देना नहीं चाहता है, और सच तो यह है कि दाऊद उसे किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहता था। हम दूसरा शमूएल 19 अध्याय उसके 24 पद में पढ़ते हैं, तब शाऊल का पोता मपीबोशेत राजा से भेंट करने को आया। उसने राजा के चले जाने के दिन से उसके कुशल क्षेम से फिर आने के दिन तक ना अपने पांव के नाखून काटे और ना अपनी दाढ़ी बनवाई और ना अपने कपड़े धुलवाए थे। मपीबोशेत दाऊद के आभार में विद्रोहियों के साथ नहीं हुआ था। वह दाऊद का निष्ठावान राहक था। उसके लिए इस पूरे समय उपवास रखकर प्रार्थना करता रहा। मेरे मित्रों, ऐसे मित्र होना सौभाग्य की बात है। हम दूसरा शमूएल 19 अध्याय उसके 25 से 28 पद में पढ़ते हैं। तो जब यरूशलेमी राजा से मिलने को गए, तब राजा ने उससे पूछा, हे मपीबोशेत, तू मेरे संग क्यों नहीं गया था? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, मेरे कर्मचारी ने मुझे धोखा दिया था, तेरा दास जो पंगु है, इसलिए तेरा दास ने सोचा कि मैं गधे पर काठी कसवा कर उस पर चढ़ राजा के साथ चला जाऊंगा, और मेरे कर्मचारी ने मेरे प्रभु राजा के सामने मेरी चुगली खाई, परंतु मेरा प्रभु राजा परमेश्वर के दूत के समान है, और जो कुछ तुझे भाए वही कर। मेरे पिता का समस्त घराना तेरी ओर से प्राण दंड के योग्य था, परंतु तूने अपने दास को अपनी मेज पर खाने वालों में से गिना है। मुझे क्या हक है कि मैं राजा की ओर दुहाई दूं? मेरे प्रियो, यहाँ पर मपीबोशेत ने दाऊद से कहा, यदि तू सोचता है कि यदि मैंने तेरे साथ विश्वासघात किया है, तो जो उचित समझे मेरे साथ कर, मुझे अधिकार नहीं कि तुझसे और अनुग्रह की याचना करूं। तब हम आगे पढ़ते हैं, दूसरा शमूएल 19 अध्याय 29 और 30 पद में, राजा ने उससे कहा, तू अपनी बात की चर्चा क्यों करता रहता है? मेरी आज्ञा यह है कि उस भूमि को तुम और सीबा दोनों आपस में बांट लो। मपीबोशेत ने राजा से कहा, मेरे प्रभु, राजा जो कुशल क्षेम से अपने घर आया है, इसलिए सीबा ही सब कुछ ले ले। मेरे विचार में इससे मपीबोशेत की निष्ठा प्रकट होती है। दूसरा शमूएल 19 अध्याय उसके 31 और 32 पद में आगे हम पढ़ते हैं, तब गिलादी वर्जिले रोगलीम से आया और राजा के साथ यर्दन पार गया कि उसको यर्दन के पार पहुंचाए। वर्जिले तो वृद्ध पुरुष था, अर्थात 80 वर्ष की आयु का था। जब तक राजा महनैम में रहता था, तब तक वह उसका पालन पोषण करता रहा, क्योंकि वह बहुत धनी था। वर्जिले गिलादी अन्य जाति प्राचीन था, जिसने अबशलोम के विद्रोह के समय दाऊद को भोजन वस्तुएं दी थी। दाऊद चाहता था कि वह उसके साथ यरूशलेम जाए, जिससे कि वह उसे प्रतिफल दे। तब हम आगे देखते हैं, दूसरा शमूएल 19 अध्याय उसके 33 और 34 पद में लिखा हुआ है, तब राजा ने वर्जिले से कहा, मेरे संग पार चल और मैं तुझे यरूशलेम में अपने पास रखकर तेरा पालन पोषण करूंगा। वर्जिले ने राजा से कहा, मुझे कितने दिन जीवित रहना है कि मैं राजा के संग यरूशलेम को जाऊं? मेरे मित्रों, यहां पर ध्यान दीजिए कि वर्जिले ने दाऊद से कहा, मुझे कितने दिन जीवित रहना है कि मैं राजा के संग यरूशलेम को जाऊं? आज मैं 80 वर्ष का हूं, अपने दास को लौटने दे कि मैं अपने ही नगर में अपने माता पिता के कब्रिस्तान में मरूं। अब मेरे लिए तो संसार में आकर्षण रह ही नहीं गया है। तब आगे लिखा है, दूसरा शमूएल 19 अध्याय के 36 पद में, तेरा दास राजा के संग यर्दन पार ही तक जाएगा, राजा इसका ऐसा बड़ा बदला मुझे क्यों दे? मेरे मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि वर्जिले ने दाऊद की सहायता की, क्योंकि वह जानता था कि दाऊद परमेश्वर का जन है। उसे राजा में पूरा भरोसा था। दाऊद की सहायता करने में वही उसकी प्रेरणा का आधार था। यह बड़ी बुरी बात थी कि दाऊद अपने ही पुत्र के साथ अधिक क्षमाशील नहीं था। यदि वह अबशलोम को उसी समय पूरा क्षमा कर देता जब वह पाप करने के बाद लौटकर उसके पास आया था, तो परिस्थिति कुछ और होती। यदि वह उड़ा पुत्र के पिता की नाई उसके गले में बाहें डालकर उसका स्वागत करता और उसे नए वस्त्र पहनाकर बछड़ा कटवाता कि उत्सव मनाए, तो मेरे विचार में दाऊद इस भयंकर विद्रोह से बच जाता। मेरे मित्रों, यहां पर अध्याय 19 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 20 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे और इसमें हम देखेंगे विद्रोह और बदले की आग। अध्याय 20 में दाऊद से विद्रोह का एक तांत है। आप सोच रहे होंगे कि परमेश्वर दाऊद पर अब तो दया करे और उसे छोड़ दे, परंतु परमेश्वर तो उसे पहले ही कह चुका था कि तलवार उसके घर से कभी दूर न होगी। इस सब परिस्थितियों में हम दाऊद का सिसकना नहीं सुनते हैं। वह उसे अपने पाप का उचित दंड मानता है। मेरे मित्रों, इसराइलियों की ईर्ष्या के परिणाम स्वरूप एक और विद्रोह आरंभ होता है, क्योंकि दाऊद को सिंहासन पर पुनः आसीन करने में उसकी सहमति नहीं ली गई थी। बिन्यामिनी शेबा उनका अगुआ था। तो आगे देखेंगे शेबा का विद्रोह। दूसरा सामुएल 20 अध्याय उसके एक पद में लिखा हुआ है, वहां संयोग से शेबा नाम एक विन्यामिनी था, वह ओछा पुरुष विकी हुई का पुत्र था। वह नरसिंगा फूंक कर कहने लगा, दाऊद में हमारा कुछ अंश नहीं और न इशय के पुत्र में हमारा कोई भाग है, हे इसराइलियों अपने अपने डेरे को चले जाओ। ध्यान दीजिए, शेबा को ओछा पुरुष कहा गया है जिसका अर्थ है निम्न वर्ग को भड़काने वाला। तब हम आगे पढ़ते हैं दूसरा शमूएल 20 अध्याय के 2 पद में, इसलिए सब इसराइली पुरुष दाऊद के पीछे चलना छोड़कर विकी के पुत्र शेबा के पीछे हो लिए, परंतु सब यहूदी पुरुष यर्दन से यरूशलेम तक अपने राजा के संग लगे रहे। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि इसराइली कैसे अनिष्ट थे और विश्वास के योग्य नहीं थे। कोई कहेगा यह तो मानव विकास और सभ्यता से पूर्ण का समय था। मैं उससे यह पूछना चाहता हूं कि क्या आज अधिक अच्छे लोग हैं। यह बड़ी रोचक बात है कि गणमान्य नेता यदि कोई ऐसी बात कह दे जो कहना आवश्यक नहीं तो चुनाव में वह हार जाएगा। इसी से प्रतीत होता है कि जनता कैसी दुचित्ती स्वभाव की है। मेरे मित्रों, परमेश्वर हमारे मन को जानता है। अध्याय 17 उसके पद 9 में यर्मिया कहता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। जी हाँ, यह पद किसके मन की चर्चा कर रहा है? एक निर्दयी तानाशाह की। जी नहीं, यह आपके और मेरे मन की चर्चा कर रहा है। मनुष्य का मन दुष्टता से भरा होता है। रोमियो के पत्री अध्याय 7 उसके 18 पद में पौलुस कहता है, मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। इसराइल के 10 गोत्र शेबा के साथ विद्रोह में सहभागी हुए। हम आगे पढ़ेंगे दूसरा शमूएल 20 अध्याय उसके 3 पद में लिखा हुआ है, तब दाऊद यरूशलेम को अपने भवन में आया और राजा ने उन 10 रखेलियों को जिन्हें वह भवन की चौकसी करने को छोड़ गया था अलग एक घर में रखा और उनका पालन पोषण करता रहा, परंतु उसने सहवास न किया, इसलिए वे अपनी अपनी मृत्यु के दिन तक विधवापन की ही दशा में जीवित ही बंद रही। ये वे स्त्रियां हैं जिन्हें अबशलोम ने अपनी हवस का शिकार बनाया था। तब हम आगे पढ़ते हैं दूसरा शमूएल 20 अध्याय उसके 4 पद में, तब राजा ने अमासा से कहा, यहूदी पुरुषों को 3 दिन के भीतर मेरे पास बुला ला और तू भी यहां उपस्थित रहना। मित्रों, आपको स्मरण होगा कि अमासा अबशलोम का सेनापति था। दूसरा शमूएल 17 अध्याय उसके 25 पद और पहला इतिहास 2 अध्याय उसके 17 पद के अनुसार अमाशा दाऊद की बहन अबीगेल का पुत्र था, अतः वह अबशलोम का फुफेरा भाई था। अबशलोम की मृत्यु और अमाशा के अधीन विद्रोही सेना की पराजय के बाद दाऊद ने अमाशा को योआब के स्थान पर अपना सेनापति बना दिया था। हम दूसरा शमूएल 20 अध्याय उसके 5 से 7 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, तब अमासा यहूदियों को बुलाने गया परंतु उसके ठहराए हुए समय से अधिक रह गया। तब दाऊद ने अबिशय से कहा, अब बिकी का पुत्र शेबा अबशलोम से भी हमारी अधिक हानि करेगा, इसलिए तो अपने प्रभु के लोगों को लेकर उसका पीछा कर, ऐसा ना हो कि वह गढ़ वाले नगर पाकर हमारी दृष्टि से छिप जाए। तब युवाब के जन और करेती और पलेती लोग और सब शूरवीर उसके पीछे हो लिए और विकी के पुत्र शेबा का पीछा करने को यरूशलेम से निकले। यहां पर दूसरे शब्दों में अमासा शेबा का पीछा करने नहीं गया, अतः युवाब सेना लेकर शेबा के पीछे गया। युवाब ने अमासा को बड़ी निर्दयता से मार डाला क्योंकि उसे संदेह हो गया था कि वह दाऊद का विश्वासघाती है। मेरे मित्रों, अध्याय के अंत में युवाब शेबा का पीछा कर रहा है। शेबा ने आबेल नगर में शरण ली और सेना उस नगर पर आक्रमण करने ही वाली थी कि एक बुद्धिमान स्त्री ने हस्तक्षेप किया और आबेल के नगरवासी ही शेबा की हत्या कर देते हैं और विद्रोह का दमन होता है। परंतु दाऊद के क्लेशों का अंत नहीं हुआ, जैसा कि हम आगे देखेंगे। मेरे मित्रों, इन सब कष्टों के मध्य भी दाऊद की चित्कार सुनाई नहीं देती है, न ही वह सिसकता है। वह जानता है कि यह परमेश्वर की ताड़ना है। मेरे प्रियो, यह कभी न सोचें कि दाऊद पाप करके बच गया था, उसे कड़ा दंड दिया गया। परंतु दाऊद परमेश्वर से प्रेम करता रहा। उसके चूकने वाले विश्वास के नीचे अचूक विश्वास था। यह दाऊद है जो परमेश्वर का जन था, परमेश्वर के मन का मनुष्य था। मेरे मित्रों, आज मेरे और आपके जीवन में भी कई प्रकार की निराशाएं आती है, लेकिन क्या आज हम दाऊद के समान उन्हें यह देखने का प्रयत्न करते हैं कि यह मेरे पाप के कारण है? यदि हम इस बात को समझ जाएं तो निश्चय हम जानेंगे कि यह परमेश्वर की प्रेम की ताड़ना है, ताकि हम परमेश्वर से प्रेम कर सकें। मेरे मित्रों, आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है, और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में दाऊद के जीवन के द्वारा से अवश्य ही आत्मिक लाभ को प्राप्त किया है। मेरे मित्रों, आज हम भी निर्णय लें और परमेश्वर के उन दिए हुए ताड़नाओं को स्मरण करें कि वह किसके लिए है, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर धोखा नहीं खाता, वह सच है और पाप को वह नहीं छोड़ता। जी हाँ, वह आपको उसका दंड देगा, लेकिन इसके लिए आप अपने आप को तैयार रखें। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वह चाहता है कि आप इससे बच जाएं, आप इससे आजाद हो जाएं। और इन्हीं बातों को हम दाऊद के जीवन में देखते हैं, वह परमेश्वर की ताड़ना समझ करके इसे स्वीकार करता है। आज के इस अध्ययन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।